Şetelik. Şetelik. एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
विश्व हिंदी सचिवालय के इस पाक्षिक कार्यक्रम क्षितिज में आप सभी श्रोताओं को कल्पना का सादर नमन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये कार्यक्रम साहित्य व साहित्यकारों को समर्पित है और उन्हीं के विचारों को हम आप तक पहुंचाने का सदा प्रयत्न करते रहते हैं। साथ ही आज की इस कड़ी में साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि हम आपकी मुलाकात भारत के एक सुविख्यात साहित्यकार से कराने जा रहे हैं, जिनकी कलम लगातार साहित्य की सेवा में लगी रहती है। आप हैं डॉक्टर अनिल वर्मा जी। आप सहारनपुर भारत से हैं। किसी ने सच ही कहा है, अंधकार है वह देश जहां आदित्य नहीं है और मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। अनिल जी, आपका आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आप के बारे में अभी हमने बताया श्रोताओं को कि आप लेखन में हैं और लगातार कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। आपकी अनेकों पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप स्वयं अपने बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताएं।
सबसे पहले कल्पना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और समस्त श्रोताओं को भी मेरा हार्दिक नमस्कार
जी।
आपके कार्यक्रम में सम्मिलित होना मेरे लिए सौभाग्य है और इस सुअवसर को प्रदान करने के लिए भी एक बार आपका पुनः हार्दिक धन्यवाद। बाबा भोलेनाथ की और गंगा मैया की नगरी बनारस में, जिसे आजकल वाराणसी नाम से जाना जाता है, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं से ही शुरू हुई। बेसेंट थियोसॉफिकल स्कूल से अपनी पढ़ाई की मैंने शुरुआत की। मेरे पिताजी एक पुलिस के ऑफिसर थे और एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं, और माता एक गृहिणी जो कि अपने टाइम में अंग्रेज़ी में ही पोस्ट ग्रेजुएट थी। पिताजी का जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र हो जाता था, हम लोगों की शिक्षा उन्हीं उन्हीं स्थलों पर हुआ करती थी। इस तरह से हमने जगह जगह पर अपनी पढ़ाई की, जैसे लखनऊ, रायबरेली, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर वगैरह वगैरह। लखनऊ के कॉल्विन कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया। गोरखपुर में सेंट एंड्रयूज कॉलेज से मैंने अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में मेरा चयन जेवी जैन कॉलेज सहारनपुर में हुआ, जहां से मैं शिक्षण कार्य में जुट गया।
बहुत खूब। अनिल जी, आपका शिक्षा के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव रहा है। साहित्य और कविता आपके जीवन के दो प्रमुख क्षेत्र रहे हैं। लेखन के मार्ग में जो इतना लंबा समय आपने गुजारा है, क्या कोई ऐसा अनुभव है जो आप हमारे श्रोताओं से बांटना चाहेंगे?
40 वर्ष मैंने शिक्षण ही कार्य किया है और हर वर्ष तरह तरह के विद्यार्थियों को गाइड भी किया है। शिक्षा का क्षेत्र और शिक्षण कार्य अपने आप में एक कभी ना ख़त्म होने वाला अनुभव है
जी।
जहाँ तक छात्रों के साथ संपर्क रखने का मौका मिला, उसमें मैंने देखा कि छात्र तो एक बिल्कुल ही मिट्टी के समान है। इंसान जितना चाहे उनको तरह तरह की शेप दे सकता है,
बिल्कुल उन्हें अपने अनुसार ढाल सकता है, लेकिन गुरु जो है वो वैसा ही होना चाहिए जो उन छात्रों को अपने साथ जोड़ सके।
सच कहा आपने, बिल्कुल। छात्रों को सिर्फ एक पुश की ज़रूरत होती है। आप उनके प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, तो उनका जीवन भी सफल हो जाता है।
बिल्कुल, यदि उन्हें सही गुरु मिले तो सही राह जो है वो तुरंत उनके सामने खुल जाती है।
सच कहा आपने,
अन्यथा वो अपने मार्ग से भटक भी जाते हैं।
जी जी।
आपने अपनी कविताओं में माँ को सर्वोपरि माना है और आपकी कलम जो है वो भी उसमें काफ़ी चली है। बहुत कुछ आपने लिखा है। कहते हैं ना कि कुछ रिश्ते मिलते हैं किस्मत से, माँ उनमें से एक है। रख सको संजो कर तो रख लो, ये सब रिश्तों में नेक है। तो माँ पर आपने इतना लिखा, इसके पीछे कोई कारण रहा या आपकी कलम उस दिशा में, क्योंकि एक पुस्तक ही पूरी आपकी माँ के ऊपर है, तो उसके ऊपर कुछ हम चाहेंगे आप अपने विचार हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें।
कल्पना जी, माँ एक ऐसा शब्द है जिसकी परिभाषा देना लगभग असंभव है। मेरा अपना विचार यह है कि ईश्वर ने सोचा होगा कि इंसान उसको देख तो नहीं सकता, इसलिए शायद उसने अपने ही रूप में ढालकर माँ बनाकर हम सब के लिए दुनिया में भेजा है।
जी,
मेरी माँ एक देवी थी जिसकी मैं जन्म जिंदगी वंदना करता था, पूजा करता था। उनका असमय चला जाना मेरे लिए एक बहुत ही बुरा तजुर्बा रहा है। वह कभी भी नहीं गई, आज भी मेरे मानस पटल में और मेरे हृदय के गर्भागृह में आज भी वो विराजमान है। जिह्वा पर हमेशा उन्हीं का नाम रहता है। कभी कुछ भी हो, सुख दुख, हमेशा माँ को ही स्मरण करता हूँ। वो एक तरीके से अमर हैं। इसीलिए कविताएं तो मेरे इंद्रधनुषी रंगों में रंगी हुई हैं, तरह तरह के विषयों पर है, पर कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर जगह पर माँ का समावेश हो ही जाता है।
बिल्कुल, छाया उनकी है, शब्द आपके हैं, भावनाएं उनकी और आपकी ऐसी मिली जुली हैं कि आप उनको जो है कहीं से भी आप जाएं, वो घूम फिर के भाव जो हैं वो उन पर ही आकर अटक जाते हैं। और जब वो वहाँ आते हैं, वहाँ रुकते हैं, तो उसके आगे आपके सामने, आपकी आँखों के सामने जो दृश्य उभरते हैं वो ना जाने आपको कहाँ कहाँ ले जाते हैं, और वही जो हैं शब्दों में पिरोकर फिर दोबारा से आपकी कलम से निकलते हैं। चलिए, ये तो रही एक ऐसा विषय जिसको कि भले हम चाहें ना चाहें, भुलाना भी चाहें तो कभी भुला नहीं सकते, लेकिन थोड़े से आपके लेखन से हट करके हम दूसरे विषय पर आते हैं। आप कॉलेज में पढ़ाते रहे हैं, आपका भले ही आपकी रुचि आपकी रही है लेखन की, लेकिन जैसा कि आजकल हम देखते हैं ये लेखन जो है ये आज के छात्रों से दूर हटता जा रहा है। बहुत कोई 100 में से एक ऐसा होता होगा जो इस ओर अपनी कहते ना कि हमें ये करना है वो करना है, जो मतलब उसका आपको उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य जो है वो बहुत कम किसी किसी का ही इस लेखन की ओर बढ़ता है। तो क्या आप सोचते हैं कि इस प्रकार की जो लेखन की क्षमता है या लेखन के विचार हैं या जो भी कहिए, जो आप लेखकों को हम कहते हैं ना पैदा नहीं कर सकते, वो अपने आप ही जन्म लेते हैं, तो क्या इस प्रकार से हम कुछ कर सकते हैं कि उनकी रुचि जो है वो लेखन की ओर बढ़ सके?
आपने एक बात तो बिल्कुल सही कही कि लेखक और कवि पैदा ही होते हैं।
जी,
उनको किस तरीके से बनाया नहीं जा सकता। वो कहते हैं ना कि कुछ कम ही ताल्लुक है मोहब्बत का जुनू से, दीवाने तो होते हैं बनाए नहीं जाते। ये लाइन बिल्कुल सही
जी
लागू होती है कवियों के ऊपर भी।
जी,
कविता अपने आप में एक स्वतः प्रवाहित होने वाली एक कला है जो कि किसी भी तरीके से जोड़ लगा के नहीं की जा सकती।
बिल्कुल,
जहाँ तक छात्रों का ताल्लुक है उनको प्रेरित करना ये रात ही और दुनिया दिनों में होने वाला चमत्कार नहीं है, इसके लिए बहुत ही सहनशीलता और व्यापक ज्ञान की आवश्यकता होती है।
जी,
प्रयत्न करते रहना चाहिए, परिणाम अपने आप ही सामने आएंगे।
अभी आपने कहा कवि नहीं बनाए जा सकते, खैर कविताओं में तो और लेखन में, गद्य लेखन और पद्य लेखन में जो है काफ़ी अंतर होता है। गद्य लेखन आप फिर भी सुधार सकते हैं, फिर भी सीख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन काव्य जो है उसके पीछे जो है एक गहरी आत्मा छुपी होती है जिसको कि उभारने की आवश्यकता होती है। आपके अपने लेखन में, गद्य में हम कहें, तो आप किस प्रकार का लेखन करते हैं?
गद्य में मैंने अधिकांश पुस्तकों के रिव्यूज़ लिखे हैं
जी,
और तमाम सारे लेखकों के बारे में उनकी आलोचनात्मक है ना समीक्षा भी की है, और एक तरीके से उनके लिखे हुए समस्त ग्रंथों का एक उसमें संक्षिप्त में एक
विवरण दिया,
विवरण है, विवरण है, क्रिटिक उनके अंदर पाई जाती है, वह सब कुछ है
जी।
जहाँ तक कविता का ताल्लुक है, मैं मानता हूँ कि कवि में और आम इंसान में सिर्फ इतना फर्क है कि कवि उन चीज़ों को बड़े आसानी से अभिव्यक्त कर देता है जो साधारण व्यक्ति सिर्फ सोचता है, जानता है, लेकिन उसको कह नहीं सकता,
कह नहीं पाता।
कवि गागर में सागर भरकर एक चमत्कार कर देता है।
बिल्कुल। और आपकी कविताएं मापर से जो हटकर हैं, इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसा है जो कि आप सोचते हैं या अनायास ही आपके मन में आता है, उभरता है? कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं चल रहे होते हैं, घूम रहे, कुछ ऐसा दृश्य सामने आता है कि जो आपको कहीं हृदय को छू जाता है और वहीं से उभरती है वो भावनाएं, वो शब्द जो कि घूम फिर के एक कविता का रूप ले लेती हैं। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है?
अक्सर यही होता है
जी,
कहीं भी जाता हूँ, बहुत मनोहारी दृश्य होते हैं, उनको मैं अपनी आंखों में समो लेता हूँ। कहीं बहुत अच्छा वार्तालाप है, उसको भी मैं अपने दिल में रख लेता हूँ। बहुत से ऐसे एकांत में विचार आते हैं
जी,
जो कि दार्शनिक भी होते हैं, व्यवहारिक भी होते हैं
जी।
अंतर्द्वंद बहुत से ऐसे होते हैं जिनको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, वे सब कहीं हृदय की गहराइयों में रहते हैं। और जब कभी भी प्रेरणा होती है, समय आता है, तो जैसे ज्वालामुखी फूटता है और लावा बह निकलता है, उसी तरह से वो सारी भावनाएं स्वतः ही बह निकलती हैं और कविता एक प्रकार से बन जाती है
जी। लेखन पर अगर हम आते हैं, तो क्या आपने कभी ऐसी कोशिश की है कि आपके विद्यार्थी कुछ उस ओर आगे बढ़ सकें, या आपने उनका कोई मार्गदर्शन किया हो, उन्हें उस ओर लाने का प्रयत्न किया हो?
कल्पना जी, इस दिशा में ही सारा प्रयत्न रहा है
जी।
40 वर्ष की सेवा में एक यही चाहता था कि बच्चे आगे बढ़ें और स्वयं में इस कदर काबिल बन जाएं कि आने वाली पीढ़ियों का भी वो मार्गदर्शन करते रहें
जी।
इस तरह से 40 शोधार्थियों को
जी
मैंने शोध कार्य के लिए प्रेरित किया और उनको डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री दिलाई, ताकि वे आगे जाकर आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करते रहें।
शोध कार्य के लिए क्या कुछ ऐसे विचार हैं, क्योंकि हमारे भी बहुत से श्रोता हैं, विद्यार्थी हैं जो जुड़े होंगे इस कार्यक्रम से और आपको सुन रहे होंगे, तो उनके लिए ये मौका है कि अगर आप उन्हें कुछ टिप्स दे सकें, कुछ ऐसी बातें बता सकें जो शोध कार्य के लिए आवश्यक होती हैं।
शोध कार्य के लिए सबसे पहले तो विद्यार्थियों को रिसर्च मेथडोलॉजी जाननी पड़ेगी
जी,
बिना उसके रिसर्च का कार्य आगे जा ही नहीं सकता
जी।
दूसरा, उनको एक बिल्कुल स्पष्ट रूपरेखा बनानी चाहिए जिस विषय पर शोध कार्य कर रहा है और किस पहलू को उनको दर्शाना है
जी।
उसके बाद उनको अनंत है पुस्तकें दुनिया में, जगह जगह जाकर उनको उन पुस्तकों से संबंधित मटेरियल इकट्ठा करना होगा और फिर एकांत में बैठकर उसको पूरा अपने आप में लेखन कार्य में डालना होगा।
बहुत बहुत अच्छा लगा, हमारे श्रोताओं ने काफ़ी कुछ सुना, आपसे समझा होगा, और आप हमारे साथ जुड़े, आपका आभार हम इन शब्दों में करना चाहेंगे, कुछ भावों के साथ। आंसुओं की जुबान नहीं होती, कहानी फिर भी कह जाते हैं, आंसुओं की जुबान नहीं होती, कहानी फिर भी कह जाते हैं, रोक लो उनको जितना चाहो, आने हो तो आ जाते हैं, और मोतियों में तुलने वाले बेमोल छलक ही जाते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आप कल्पना जी।